प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अर्पा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। इस कड़ी में आज सुनिए बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा का प्रेरक उद्बोधन।
आप सभी को मेरा नमस्कार। परीक्षा को लेकर के अभी हमारे परिणाम आने वाले हैं, उसमें हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, रिजल्ट को लेकर के विशेष रूप से 10th और 12th के बच्चे जिनका बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला है, हम टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं क्या परिणाम होंगे। और बच्चों में विशेष रूप से ये तनाव जो होता है वो एक कहीं ना कहीं उनको एक टेंशन देता है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये सही नहीं है, और उनके लिए अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर भी उनको ले जा सकता है। तो ये एक क्रूशियल टाइम होता है जब हमको बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनके साथ चर्चा करने की ज़रूरत है, और ये टेंशन क्यों है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले जिला प्रशासन में कलेक्टर सर का सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये सेशन सभी के लिए स्टार्ट किया ताकि हम इस बारे में चर्चा करें और इस प्रॉब्लम को जो कि हम एक रूटीन समझते हैं कि नहीं इतना तो होना चाहिए, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक गलत दिशा की ओर ले जाता है। ये प्रेशर जो है एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का, उसको हमको सही करने की ज़रूरत है, जिस पे हम चर्चा करने बैठे हैं। पिछले 2 दिनों से आप हमारे जिले के प्रमुख अधिकारियों और वरिष्ठ जनों को सुन रहे हैं, आगे भी 3-4 दिन हम अलग अलग लोगों को सुनेंगे। मैं एडिशनल SP अर्चना झा, यहाँ एडिशनल SP रूरल के पद पर पदस्थ हूँ। आप सभी से अपने कुछ अनुभव साझा करूंगी कि क्या हम ऐसे रिजल्ट्स के तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या कारण है, और इससे हमको कैसे हम इनसे उभर के बाहर आ सकते हैं और टेंशन फ्री रह सकते हैं। आप लोग के बीच में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं और हम उस पर भी आगे बात करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। जैसे हम देखें कि ये टेंशन क्या है, जैसे परीक्षा परिणाम को लेकर के हम क्या सोचते हैं, तो ये पूरा ये है कि जहाँ पे अब ये एक बोलना चाहिए पूरी तरीके से एक बोलना चाहिए व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि जब जो जिम्मेदारी हम पर नहीं है, यानी कि पेपर लिखने तक तो हम डिपेंडेंट हैं, हमको पता है कि पढ़ाई करना है, लिखना है, एग्ज़ाम देना है, वो हमारी जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है जब हम अपना एग्ज़ाम पेपर लिख देते हैं। इसके बाद हमको हम यदि किसी अन्य चीज़ का यानी परिणाम का टेंशन ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि ये चीज़ अब हमारे हाथ में नहीं है। तो जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी वहाँ तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब जो चीज़ हमारा काम नहीं है उस चीज़ को लेकर के हमको अनावश्यक कोई भी प्रकार का जो है किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो हम लोग भी जब हम 10th 12th में थे, PSC के एग्ज़ाम भी दिलाया था, उस समय इतनी टेंशन्स होती थी कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मैं और मेरी फ्रेंड धनलक्ष्मी चौरसिया, हम दोनों एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जब एग्ज़ाम से या निकलते थे बाहर तो ये बोलते थे कि पता नहीं क्या होगा, कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, तो वो हमेशा यही चीज़ बोलती थी, तू अब अपना काम तो कर लिए, अब एग्जामिनर का काम भी करेगी तो एग्जामिनर क्या करेगा। तो ये चीज़ है कि हमको इस चीज़ को अपने काम तक ही सीमित रखना है, ना कि जो हमारे पर्यवेक्षक हैं जो एग्ज़ाम के रिजल्ट बना रहे हैं उनके काम को खुद करना है। तो अब जो भी रिजल्ट हो उस चीज़ के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें कि हम कैसे अपना टेंशन कम कर सकते हैं, उसमें हर किसी की अलग अलग भूमिका है। स्टूडेंट की अलग भूमिका है कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स की अलग भूमिका है कि हम पालकों का क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, उसको हम कैसे इस चीज़ में जो है शॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ टीचर्स की भी भूमिका होती है, चूँकि परीक्षा, स्कूल और टीचर्स एक दूसरे से कहीं जितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं वही स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जैसे हम पालकों की बात करें, तो जैसे पालक आज के युग में हम देखें तो हम जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ते जा रही है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे के नाम से हमारा नाम हो, जैसे ये कौन पेरेंट्स की पहचान है, तो ये जो ट्वेल्थ टॉपर है या ये इसके बच्चे ने इतने इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है या इतनी रैंकिंग है, तो अपने स्टेटस को हम कहीं ना कहीं, अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करें कि हम उनसे जो चीज़ें, हम खुद का रिजल्ट देखें तो कहाँ हम कभी, हमने मतलब बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थ्रू आउट उनके रहे हों, या बहुत कम 0.001% ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कभी फेल नहीं हुए होंगे स्कूल या कॉलेज में। तो इसके बाद भी हम अपने बच्चों से हमेशा उम्मीद करेंगे कि नहीं वो हमेशा टॉप करें, बहुत अच्छी रैंकिंग लाएं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आया है या फला जी का लड़का जो है बहुत अच्छे नंबर्स लेकर के आया है। तो हम जो ये कंपैरिजन करते हैं और ओवर एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज करता है। इसलिए मैंने सबसे पहले पालकों की बात की, क्योंकि पेरेंट्स की ही सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को मेंटल स्ट्रेस से फ्री रखना, उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश और पॉजिटिव रख सकें। घर से ही हमको ये संस्कार बच्चों में देने होंगे कि वो कहीं ना कहीं हर प्रकार की परिस्थिति को कैसे फेस कर सकते हैं, उन परिस्थितियों का कैसे सामना कर सकते हैं। इनको हमको यह सिखाना होगा कि ज़रूरी नहीं है हर बार हमारे साथ सब अच्छा ही हो, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर जो कि कई बार हो सकता है हमें डिस्ट्रैक्ट करें, कई बार स्वास्थ्यगत कारण हो सकते हैं। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं, हम जब पीएससी मेंस का पेपर था मेरा, तब मेंस के पेपर के ही 15 दिन पहले मुझे हार्ट पेस हो गया था। एक माता टाइप का एक बीमारी होती है जिसमें बैठना भी मुश्किल होता है, तो उस समय मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मतलब मैं बैठ के, क्योंकि एक दिन में 2-2 पेपर होते थे, तो वो पेपर दिला भी पाऊँ, और ये ठीक नहीं हो रही थी बीमारी। लगभग 1-2 सितंबर से मैं इंजर्ड हुई थी और 15 सितंबर से मेरा मेंस का पेपर था, तो उस समय बस इतना मैं ठीक हो पाई कि मैं एटलीस्ट पेपर के लिए बैठ पा रही हूँ। बट मेरे पेरेंट्स ने कहीं मुझे इस दौरान प्रेशराइज नहीं किया कि आप नहीं तुमको करना है या इसी अटेम्प्ट में निकालना है। बस उनका ये था कि बेटा बैठ पाएगी तो दिला लेना, नहीं बैठ पाएगी तो मत दिलाना, कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार ट्राई करेंगे। तो ये हमको पेरेंट्स के बीच में इतना बॉन्डिंग होना चाहिए, बच्चों को इतना समझना चाहिए कि हम उन पर प्रेशर ना डाल करके उनको इतना मोटिवेटेड रखें कि वो अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान दे सके। अनावश्यक प्रेशर में भी स्वास्थ्य खराब होता है, तो वो भी चीज़ें हैं और कुछ कारण भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएं, तो उनको हमको सही दिशा में लाना है। क्योंकि पढ़ाई हम लगभग 15 से 20 साल बच्चे पढ़ते ही रहते हैं, नर्सरी से लेकर के 12th तक ही 15 साल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 5-6 साल ग्रेजुएशन पीजी करते तक, तो इतने साल तक हम सोचे कि हमारा बच्चा एकदम सही दिशा में चलता रहे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो, हर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए, ये पॉसिबल नहीं है। समय के अनुरूप अलग अलग बच्चों के हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, ग्रोथ होती है, उनके अनुरूप उनकी सोचने समझने की दिशा भी तय होती है। तो उस समय हो सकता है कि कहीं कहीं बच्चे को आपकी ज़रूरत हो सही दिशा में लाने की, या कहीं कहीं उनकी गलतियों को माफ़ करने की भी। तो हम उनसे हमेशा ये ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बच्चा हमेशा 90% लाएगा, 80% लाएगा। इनफैक्ट मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो 10th में मुझे भी 77% मार्क्स मिले थे, मैं कहीं टॉपर नहीं थी अपने स्कूल की। तो हम अगर ऐसे बहुत से लोगों से, जिन भी सफल लोगों से आप बात करेंगे, तो देखिएगा कि कहीं किसी का कहीं पे मतलब मुश्किल से 0.01% ऐसे लोग होंगे जो कि 10th 12th वगैरह में अपने स्कूल कॉलेज में टॉपर रहे हैं, बाकी सभी कहीं ना कहीं कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड डिवीजन, अलग अलग नंबरों से सभी पास हुए होते हैं। अतः हम इस परिणाम को इस रूप में ना लें कि यही जो है इनके करियर को डिसाइड करेगा या बच्चों के आगे के भविष्य को डिसाइड करेगा, तो अलग ऑप्शंस हैं। और इनफैक्ट हम करियर की बात करें तो बहुत सारे आज के युग में करियर के ऑप्शंस हैं, जैसे बच्चा एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है आगे जाकर के, कहीं पे स्पोर्ट्समैन हो सकता है अगर कहीं पे उसको इंटरेस्ट हो, आज के डेट में एक्टिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिनेमेटोग्राफर है, और कई ऐसे करियर ऑप्शन है, यूट्यूबर्स आजकल कितने मतलब बहुत अच्छा करियर हो गया है लोगों का। तो जो भी उनकी योग्यता है उसके अनुरूप, ज़रूरी नहीं है कि इन सभी करियर ऑप्शन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स 10th या 12th में आने की ज़रूरत है, इनफैक्ट कई में तो डिग्रीज की भी आवश्यकता नहीं है। आज कृषि के क्षेत्र में भी देखें तो उन्नत कृषि करके, वैज्ञानिक कृषि करके बहुत अच्छा जो है अपने करियर को लोग चला सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, केवल हम इन रिजल्ट्स पे डिपेंड हो करके अपने बच्चों को प्रेशराइज करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, उनको कहीं भी हम कंपेयर करने की कोशिश ना करें। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसमें अपनी प्रतिभाएं हैं। हो सकता है वो प्रतिभा आप अभी समझ पा रहे हो सकता है ना समझ पा रहे हो, बच्चों में उतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती, टीनेजर्स हैं तो वो खुद भी अपने आप को अभी एनालाइज करते होते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है या ये पसंद है, ये सब्जेक्ट लूँ या वो सब्जेक्ट लूँ, तो वो खुद ही अपने उलझनों में इतने उलझे होते हैं। उसके बाद फिर हम खुद उनको प्रेशर डालेंगे, साथ ही साथ हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये भी सीख ले वो भी सीख ले, यहाँ भी ये क्लास चला जाए फिर ट्यूशन चला जाए फिर स्कूल चला जाए फिर स्विमिंग क्लास चला जाए, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्टेशन है तो ओवरऑल ग्रो हम बच्चों को करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी हम उनके परसेंटेज को लेकर के क्राइटेरिया ना बनाए कि अगर इतने परसेंट आएगा तभी मेरे बच्चे अच्छे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं, या कोई हम ऐसा क्राइटेरिया ना बनाए कि टॉप ही करना है या कुछ है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बच्चा फेल भी हो जाए, हमको इस चीज के लिए मेंटल प्रिपेयर रखना है और बच्चों को समझना है कि अच्छा कारण क्या था इस चीज का, क्या बच्चे को अच्छे से समझ में वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, आगे मैं उस चीज के लिए बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं उनको कि बच्चे उस सब्जेक्ट को बेटर तरीके से समझ पाएं, अच्छे से खुद से सीख पाएं और उस पर अच्छे आंसर्स लिख पाएं, उस सब्जेक्ट में फ्रेंडली हो पाएं। उसके लिए हमको साल भर नेक्स्ट ईयर में अगले सेशन में उसके लिए प्रयास करना होगा, ना कि जो बीत गया उसके लिए हम बच्चे को दोषी ठहराएं। तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो हम अभी बात कर रहे थे, और इसके अलावा भी हमको भी मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हम जो भी कंडीशंस होगी बच्चा अच्छा भी कर सकता नहीं भी कर सकता, और बच्चों को बताना भी है क्योंकि हम शेयर नहीं करते हैं। क्या होता है कि जनरली माता पिता दोनों में या पिता थोड़े से शाये होते हैं, बच्चों से उतनी फ्रेंडली बात नहीं करते हैं। कई जगह मम्मियाँ भी आजकल जॉब में रहती हैं, किसी के पास उतना मतलब हम बच्चों के साथ बैठ के चर्चा करें, टाइम उनके साथ स्पेंड करें, ज़्यादा हम उनको सीखने समझने के लिए समय दें वो हम नहीं हो पा रहे हैं। बच्चा अपने स्कूल और एक्टिविटीज़ में दौड़ रहा है, पेरेंट्स अपने जॉब में दौड़ रहे हैं, तो उस समय को निकाल के बच्चों के साथ थोड़ा व्यतीत करना है, उनको समझने के लिए समय देना है, और ये विश्वास दिलाना है बच्चे को कि बेटा तेरा रिजल्ट अच्छा आए चाहे खराब आए हम तुम्हारे साथ हैं, अगर खराब आएगा तो मिल करके सुधारेंगे अगली बार। तो ये विश्वास बच्चों को देना पड़ेगा, उनको किधर रुचि है उसको हमको समझना पड़ेगा। और हम बच्चे से सोचते हैं कि बच्चा तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, तो वो जहाँ जाना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, बट आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा। आपकी एज आज और आपके अनुभव की तुलना में बच्चे का अनुभव और एज आपसे एकदम आधा है, तो आप थोड़ा सा उनके लिए एक ऑप्शंस तैयार करके खुद भी समझ के कि नहीं अच्छा ये नहीं है, तो बच्चे की रुचि इस साइड है तो ये भी करियर ऑप्शन है, ये इस दिशा में बच्चा जा सकता है, उनको ऑप्शंस हम दें, उनसे चर्चा करें बात करें ताकि वो अपना प्रेशर जो है आपके पास रिलीज कर सकते हैं और कहीं उसके लिए और कहीं उनको भागने की जरूरत ना हो। अगर पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी 90% समस्या वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर हम टीचर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो टीचर्स के पास बच्चा प्रतिदिन 6 से 7 घंटे रहता है, इनफैक्ट उतने देर तो अपने बच्चों के पास भी नहीं, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं रहता, तो उस समय टीचर्स बच्चे को अगर कंटिन्यू से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर्स उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, जितने कि पेरेंट्स जान सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से वो जानते हैं, तो उनकी रुचियों के अनुरूप उनको करियर ऑप्शंस देना और उनको भी हर परिस्थिति के लिए जीतने हारने के लिए उनको तैयार रखना। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, कितनी तरीके हैं, अलग अलग हम ऑप्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई कुछ भी नंबर नहीं लाता, कई बच्चे जीतते हैं कई हारते हैं, तो ये जीतने हारने की प्रैक्टिस हमारे बच्चों में हमको करानी पड़ेगी। हम हमेशा ये उनको ना करें कि बच्चा जीतेगा ही, कभी हारेगा कभी जीतेगा, तो ये चीज़ें हैं उससे हम हर परिस्थिति के लिए उनको तैयार करें कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, जो भी होगा बेस्ट होगा, लेकिन वो हम किस चीज़ को अच्छा मानते हैं कि यहाँ पे हमारा अच्छे नंबर आ गया तो वो अच्छा है, सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं होना उनके लिए अच्छा है, कि जैसे हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, जैसे पीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे साथ में जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू तक गए मेरे कुछ साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस समय तो नहीं हुआ, बट उन्होंने तैयारी अपनी लगातार जारी रखी। उनके लिए सच में वो इंटरव्यू के बाद वापस आना एक बड़ा टेंशन हो सकता था, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखा, तैयारी की, आज वो यूपीएससी सेलेक्टर हैं। और एक जो यूपीएससी का एग्जाम दिलाया था मेरा फ्रेंड, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट उसने आज बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, 5 जिलों में उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। काफी अच्छा वो कितने लोगों को सिलेक्ट करा पा रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शंस हम सोचते हैं कई बार कि अगर ये चीज नहीं हुई तो हम यहाँ पे फेल हो गए और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई बार फेल होना भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम शायद फेल नहीं होते उस चीज में तो शायद हम उससे बेटर की तैयारी नहीं करते। तो ये हमको सोचना है और बच्चों में ये सिखाने की कोशिश करना है कि हमको हर कंडीशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। और उसकी बच्चों को जैसे टीचर्स को चाहिए कि योग्यता के अनुरूप उनको हम ऑप्शंस जो हैं वो दें, और उनके पेरेंट्स से भी आजकल पीटीएम वगैरह होते हैं स्कूल में, चर्चा करें, बच्चों के बारे में बताएं कि किस दिशा में इनकी रुचि है और कहाँ हम उनको ले जा सकते हैं। और ये अच्छा है जैसे स्कूल में आजकल ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं, ज़्यादा बच्चों को परसेंटेज पे प्रेशराइज नहीं किया जाता है, परसेंट नहीं दिए जाते हैं। साथ ही एक चीज़ हम जैसे स्कूल में योग मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, इसको हम रेगुलर बेसिस पे हर क्लास के लिए कंपलसरी करें। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे हम प्रेयर डेली करते हैं स्कूल में, हम सभी जाते हैं प्रेयर करते हैं, उसी प्रकार 5 मिनट यदि उनको मेडिटेशन या योग कुछ ऐसा कराया जाए डेली, ताकि उस चीज के लिए वो अभ्यस्त हो जाएं कि कैसे हमको मेडिटेट होना है। और वो जो मेंटल हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी, क्योंकि आज जितनी दौड़ भाग और प्रतिस्पर्धा में हम और इतने फास्ट रिस्पांस का हम बच्चों से सबसे उम्मीद करते हैं कि कोई चीज़ पहले हम कोई लेटर आता था वो पहुंचता था, रिजल्ट आता था, फिर हम देखते थे अच्छा रिजल्ट आया, अभी वो ऑनलाइन इतने बजे आ जाएगा, उस ऑनलाइन में आने के 5-10 मिनट के अंदर सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो जाएगा। तो हर मिनट में व्यक्ति जो है आज रिस्पांस की एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर चीज में कोई भी चीज चाहिए तुरंत गूगल में खोज रहे हैं, तुरंत मिल जा रही है। मतलब वेट करना और ये लोगों को थोड़ा सा किसी भी चीज के लिए वो बहुत मुश्किल हो गया। जैसे हम पहले याद करें, हमको वीकली एक सीरियल आता था या चित्रहार या रंगोली आता था, हम लोग बैठ के पूरे सप्ताह वेट करते थे, और मान लो सप्ताह में एक दिन पिक्चर आती थी, वो मूवी देखते थे, उस बीच में 15-15 मिनट का एडवर्टीजमेंट आता था, उसको शांति से बैठ के उस एडवर्टीजमेंट को भी देखते थे। अब आज की डेट में हम यूट्यूब में अगर कोई वीडियो देख रहे हैं और 4 सेकंड में स्किप एड का ऑप्शन होता है और एड आता है, तो वो 4 सेकंड भी वेट करना हमको खराब लगता है कि अरे एड क्यों आ गया। तो ये पेशेंसलेस जो हम होते जा रहे हैं सभी लोग, तो बच्चों में भी यही चीज है कि वो चीज होते जा रही है। उस दौरान हमको मानसिक रूप से स्थिर होना, थोड़ा सा धैर्य रखना, और हर परिस्थिति में हमको धैर्यता के अनुसार उसमें रिस्पॉन्स करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कहीं ना कहीं योग, प्राणायाम, मेडिटेशन जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये चीज़ हम घरों में, चूंकि बच्चे सुबह से स्कूल भाग आते हैं तैयार होकर के, तो हर घर में ये मेरे ख्याल से पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन स्कूल में यदि इसको कंपलसरी हम बच्चों को कराएं कि नहीं डेली क्लास शुरू होने से पहले इनको ये करना है या क्लास खत्म होने से पहले करना है, तो शायद उनके मानसिक स्वास्थ्य पे हम बहुत अच्छा जो है एक उनको सपोर्ट दे सकते हैं। अब हम जैसे हमने पेरेंट्स की बात की, टीचर्स की बात की, अब स्टूडेंट्स के लिए क्या, सबसे ज़्यादा टेंशन तो स्टूडेंट्स को ही है कि अब पेपर दिला लिया अब क्या होगा। तो बच्चों ये चीज़ ज़रूर ध्यान में, हमेशा ध्यान में रखो कि ये कोई लास्ट ईयर नहीं है आपका, लाइफ का लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं है आपका। बहुत सारे आपने एग्जाम्स दिलाए हैं और बहुत सारे आगे और दिलाना है, हो सकता है किसी में अच्छा ना हो तो हम फिर से रिपीट करके उसको एग्जाम को दिलाएंगे। आप सोचिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम तैयारी करते हैं, प्री दिलाते हैं, मेंस दिलाते हैं, इंटरव्यू दिलाते हैं, इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर से प्री दिलाते हैं, फिर मेंस दिलाते हैं, फिर इंटरव्यू दिलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप सेलेक्टर्स से मिलेंगे जो कि तीनों स्टेप क्रॉस क्रॉस कर करके 2-3 बार फिर फेल होते हैं, फिर जीरो में आते हैं सांप सीढ़ी के खेल के टाइप, फिर वापस तैयारी करके जाते हैं। तो ऐसा लाइफ में हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी होता है, किसी के साथ छोटी क्लासेस में होगा, कहीं हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या और भी जो भी तैयारी कर रहे हैं हायर एग्जाम एजुकेशन के लिए उसमें होगा, तो सबके साथ ही होगा, तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है हमको, बिल्कुल नहीं सोचना है कि यही लास्ट टाइम है और इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा या लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें को छोड़ दीजिए। लाइफ बहुत लंबी है और पूरी लाइफ भर हमको कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये वैसे ही एक भाग है उसका। अभी नहीं सीखा तो अगले उसमें कर लेंगे। बस ये सोचें कि हाँ ठीक है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है हमारा, प्लान बी हम तैयार रखें कि हाँ ठीक है नहीं होगा तो हम ये तैयारी करेंगे, ऐसे करेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या तैयारी करेंगे। तो उस नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि हाँ ठीक है, हम ये सब्जेक्ट अगर मुझे रुचि नहीं तो आगे तो एजुकेशन सिस्टम में भी ये है कि आप जो सब्जेक्ट पसंद करते हैं उसको चूज करके पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंपलसरी कि ये ले आया तो ये भी लेना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, केमिस्ट्री ले लिया तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैथ्स ले लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। आगे ऐसे ऑप्शंस भी रहेंगे आपके पास कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, ना कि सभी उसके साथ ही सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी हो। तो ये ऑप्शन जब आपको है तो इस प्रकार से हमको सोच के चलना है कि इस एग्जाम से ही आपकी जो लाइफ है वो जो है एकदम स्टक नहीं हो जाती है यहीं पर। हमारे पास बहुत से आगे अवसर हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक चीज़ जो मैंने बताई ना कि कहीं कहीं फेल होना भी अच्छा है, कहीं कहीं सिलेक्शन नहीं होना भी अच्छा है। एक हमारे साथी हैं जिनका हमारे साथ सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन नेक्स्ट पीएससी में उन्होंने टॉप किया था छत्तीसगढ़ में, तो ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारा फेल होना भी कई बार हमारे लिए सही होता है। तो ये सोच करके हमको नेक्स्ट कैसे तैयारी करना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ये नहीं है कि हम उस चीज़ को सुधार सकें। अब एग्ज़ाम हमने लिख लिए तो अब आगे क्या करना है, इस चीज़ को लेकर के प्लान करें और जो है अपनी आगे की तैयारी करें। उसके अलावा जैसे हम मेंटली प्रिपेयर भी रहें, वर्स्ट कंडीशंस क्या हो सकती हैं, कि क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम भी हमको ये रहना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं, हो सकता है एग्ज़ाम के बीच में कोई आपके आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए या परिवार में कोई आवश्यकता आन पड़े या कोई आते जाते कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट जैसी चीज़ें भी, बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं, तो हम ये कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता है कि यही पेपर दिलाना है। तो हमको हर वेरिएशन के लिए अपने को तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हमको क्या करना है। और संवाद लगातार बनाए रखें, पेरेंट्स भी बच्चों से और बच्चे भी पेरेंट्स से, हम बातचीत करते रहें, अपने जो है क्वेरीज हैं उसको पूछते रहें, अपने टीचर्स से भी बातचीत करते रहें, दोस्तों से भी चर्चा करते रहें। और कभी भी मतलब ये ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हम बात करें बिल्कुल कि हाँ अगर ऐसा रिजल्ट आए तो भी ये ठीक है, अगर नहीं आया तो भी ये ऑप्शन हो सकता है। प्रेशर बिल्कुल फील ना करें। और एक चीज़ जो बच्चों से बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि हम सोशल मीडिया मोबाइल में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उस टाइम को कम करें जितना कम कर सकते हो। और आगे जैसे बच्चे पढ़ाई की रणनीति तैयार करके अपनी रखें, जैसे पढ़ाई के लिए अगर मैं कुछ सुझाव देना चाहूँ तो जैसे क्या हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, कई चीज़ों को हम गूगल से निकाल करके नोट्स निकालते हैं, बिना प्रिंट निकाले उसको वहीं मोबाइल में पढ़ लेते हैं, तो इन सब ऑप्शंस को हटा करके हम अपने पास में बुक्स रखें, प्रिंट रखें, अंडरलाइन करके पढ़ें, क्योंकि हम जो चीज़ अंडरलाइन किए होते हैं आप अगर बार बार उसको याद करेंगे तो आपको पता रहेगा कि पेज के इस साइड में कौन सा आंसर था, नीचे में क्या था, ऊपर साइड में ये लिखा हुआ था। अगर आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो पढ़ने की थोड़ी तकनीकें हम सुधारें, लिखने के तरीके सुधारें, पढ़ाई का जैसे हम लिखते भी हैं तो ऐसा लिखें कि बहुत क्लियर हो, समझने वाले को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। हमारे हम जो पेपर लिखते हैं तो जो चेक करने वाले हमारे टीचर्स होते हैं, हमको उनकी सुविधा का ध्यान जरूर रखना है कि पढ़ते टाइम उनको जो है बिल्कुल असुविधा ना हो, ताकि आप जो लिखे हैं वो एकदम क्लियर हो, यानी अच्छी हैंड राइटिंग में हो, प्रॉपर गैप छोड़ करके लिखें, चाहे तो ब्लू और ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाईलाइट मतलब कहीं अंडरलाइन कर सकते हैं और सरल शब्दों में लिखें, थोड़े बड़े अक्षरों में लिखें, कई बच्चे छोटा छोटा लिखते हैं, कर्सिव में ऐसा घुमा देते हैं कि कुछ क्लियर समझ में नहीं आता है। तो उन चीज़ों को हम कोशिश करें कि हमारे जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स हैं उनको तकलीफ ना हो, क्लियरली उनको दिखाई दे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आंसर क्या देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर रहने से आप अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो आगे के लिए आप सोचें, बात करें कि कैसा आप आगे कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा करें। अब इस बीच में कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आए हैं कुछ लोगों के, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। रामेश्वर जायसवाल जी ने लिखा है कि आजकल बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, ऐसे बच्चे हैं परीक्षा के समय ज्यादा से ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, बच्चों को अनुशासित रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? बच्चों को अनुशासन जो है, हमको एक तो कोशिश करना है कि घर से ही हम उसकी लाइफस्टाइल को थोड़ा व्यवस्थित करने की कोशिश करें, उनको एक शेड्यूल जैसे हम बनाते हैं, टाइम टेबल जैसा बच्चों का है, कि ये खुद उसमें मोटिवेट हो करके कि नहीं, ये उनको अगर सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, खुद उनको बोलें कि आप अपना शेड्यूल बनाओ, और उस शेड्यूल में ज़रूरी नहीं बहुत सारी चीज़ें शामिल हों, एक सिंपल लाइफ का अगर वो जिसमें आराम भी कर रहे हो, जैसे कि अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, उसी में हम उनको बोलें कि आप अपना खुद का शेड्यूल बनाइए कि आप क्या करेंगे। अब उस शेड्यूल में वो खुद भी अगर फ्रेश माइंड में बैठेंगे तो अपने लिए सोचेंगे, अच्छा मैं 4 घंटे तो सिर्फ टीवी ही देख रहा था, या इतने घंटे मैं क्या किया हूँ। तो अगर वो खुद की लाइफ को एनालाइज करेंगे बच्चे कि मुझे इतने अगर इतना समय है तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ, क्या आप इंटरेस्ट ले रहे हो, जैसे हॉबीज है उनकी, तो उतने देर एटलीस्ट वो अपनी हॉबी की बात करें, हॉबी से रिलेटेड कुछ काम अपना करें। तो वो अगर शेड्यूल खुद बनाएंगे फिर उनसे हम फॉलो करने के लिए कहें कि ये आप फॉलो करिए, ना कि अपना बनाया हुआ शेड्यूल थोपने के बजाय उनसे हम फॉलो करवाएं उस चीज़ को। तो धीरे धीरे अगर वो अपने चीज़ों को फॉलो करना सीखेंगे और अपने शेड्यूल को, अपने प्रायोरिटीज को, जैसे प्रायोरिटी में बच्चों को लगता है कि जैसे स्कूल से जब वो आते हैं तो अभी तो थक गए स्कूल से, खेलते कूदते जब फिर रात को 8-9-10 बज जाते हैं तब याद आता है अरे होमवर्क नहीं हुआ है, तब वो रात में बैठते हैं होमवर्क करने। तो वो प्रायोरिटी में उनको चेंज कराना है कि भाई आपका अगर कल का होमवर्क है तो उसको आप स्कूल से आकर के पहले कर लीजिए, उसके बाद आपका जो टाइम बचता है और उसमें फिर अपनी हॉबीज और टीवी और जो भी उनको देखना है, तो वो हम सबको मिल करके थोड़ा उनके साथ में चर्चा करके उनको करना पड़ेगा। मैडम जी 10th के बाद क्या करें, ये यशोदा साहू जी ने पूछा है। 10th के बाद सभी को पता है 10th के बाद अपन को 11th 12th पढ़ना है, 10th के बाद जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लेना है और आगे पढ़ना है अपने को। सुनंदा जी ने लिखा है कि विश्वास बच्चों को देना पड़ेगा कि उनको किधर रुचि है, उसको हमको समझना पड़ेगा, हम बच्चे से होते हैं, बच्चा तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा उनके लिए ऑप्शंस तैयार करके खुद भी समझ लें। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा सुझाव दिया है कि बच्चों से हम चर्चा करें और उनके समझ के अनुरूप, उनके इंटरेस्ट के अनुरूप उनको दें। आजकल स्कूलों में एक ही क्लास में 55 से 60 बच्चे बिठाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार की ज़रूरत है। देखिए जो बेस्ट ऑप्शंस हैं स्कूल में वो देने की कोशिश हमेशा टीचर्स करते हैं, तो हमको भी इसमें सपोर्ट करना है। पढ़ाई में सभी बच्चों को एक टीचर अच्छे से पढ़ा सकते हैं, सभी बच्चों को इंटरेस्ट लेकर के उसमें ध्यान देना चाहिए। तनाव दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा या जिला प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय पहल। आप धन्यवाद पटेल जी, आपने यहाँ पे प्रशासन को धन्यवाद दिया है। मैडम जी स्कूल के बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो, इसके लिए उन्हें ट्रैफिक पार्क में भ्रमण करने ले जाना चाहिए। स्कूल में बाइक लाने पर रोक लगानी जानी चाहिए क्योंकि बच्चे अव्यवस्थित रूप से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आलोक वालिम्बेर जी ने ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका सुझाव हमारे लिए जो है अनुकरणीय है। हम बच्चों को ट्रैफिक पार्क बीच में दिखाते रहे हैं और ट्रैफिक नियमों को लेकर के हमने ट्रैफिक की पाठशाला जो है बिलासपुर में चलाई है, जिसमें लगातार सभी बच्चे जो है और इनफैक्ट बड़ों को भी हमने शिक्षित किया है और स्कूलों में जाकर के विशेष रूप से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया है। और आगे भी जैसे ही अब स्कूल खुलते हैं हम बच्चों को जरूर ट्रैफिक पार्क का भी भ्रमण कराएंगे और ट्रैफिक अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ बच्चियों से विशेष रूप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स से भी और बच्चियों के बारे में भी ये बोलना चाहूँगी कि बच्चियाँ हमारी पढ़ाई करती हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर रहता है जो कि बच्चों में नहीं रहता, बच्चियों में ज़्यादा रहता है कि भाई अगर हम जैसे 12th बच्चे निकल गए तो कई ग्रामीण परिवेश में ये होता है कि आगे उनको पढ़ने के लिए बाहर जाने दिया जाएगा कि नहीं, अगर आगे अच्छे परसेंटेज नहीं आते हैं तो उनको जो है ऑप्शन करियर का मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। कई पेरेंट्स हैं आज भी जो बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं, या कहीं उनको शादी का प्रेशर रहता है कि नहीं अब बच्चे का 12th हो गया है, अब जैसे जैसे ग्रेजुएशन करे या ना करे अब इसकी शादी कर देना है, एक लाइबिलिटी के तौर पे अभी भी कई क्षेत्रों में बच्चियों को भी देखा जाता है। तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चों से ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैं आज के युग में सोचूं तो बच्चियों को अपने पैर पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, उनको करियर के सारे ऑप्शंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा न केवल आपको अपने पैर पे खड़ा होना, आपको जो है आय का साधन देती है, डिग्रीज देती है, उसके अलावा जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षा आपको मैच्योरिटी देती है, और एक जो बच्ची है बड़े होकर के एक पूरे परिवार को एक संस्कार देगी, परिवार को लेकर के चलेगी। वहां बच्ची को पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, शिक्षित होना, मैच्योर होना बहुत जरूरी है, तभी वो पूरे परिवार को वो शिक्षा दे पाती है। तो ऐसे में यदि आप वो ऑप्शन ही यहीं पेरेंट्स खत्म कर देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बच्चियों का बहुत जरूरी है। जहाँ हम बच्चियों में, महिलाओं में घरेलू हिंसा की बात करते हैं, दहेज प्रताड़ना की बात करते हैं, या चूंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे बच्चियों की प्रताड़ना अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं विवाह पश्चात होती, तो वो चीजें भी आप यहीं खत्म कर देते हैं। चूंकि बच्चा यदि आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उनके साथ में प्रताड़ना और वाली बातें सब वहीं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बहुत से लोग केवल इसलिए उस प्रताड़ना को सहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थिक रूप से पहले माता पिता पर निर्भर थे, अब आगे ससुराल पर निर्भर है। तो अगर वो आत्मनिर्भर नहीं हुए तो वापस वो अगर प्रताड़ित है ससुराल में, तो माता पे आकर के फिर से वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, तो ऐसे में वो सहते रहती है, अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाती। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बच्ची आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो गलत होने का वो विरोध कर सकती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है, और कहीं उसकी डिपेंडेंसी नहीं होने से वो खुद भी अपने आप में डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, यह सोच के वो अगर अन्याय है तो उसके खिलाफ आवाज उठा के यदि अलग रहना चाहती तो अलग भी रह सकती, न कि कोई गलत कदम उठाए। तो जितने घरेलू हिंसा या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना वाली बातें हैं वो एक सिरे से वहीं खारिज हो जाती है जब बच्ची अपने आप में आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से हो जाती है। साथ ही साथ बाहर निकलती हैं घर से तो उनका एक विकास भी होता है, मानसिक रूप से पूरे देश दुनिया को देखती हैं, समझती हैं, सही निर्णय की क्षमता जो है उस शिक्षा से वो ले पाती हैं। अतः कहीं गलत होने पर उनको वो आत्मविश्वास आता है कि नहीं ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि वो उस चीज के खिलाफ विरोध कर सके, आवाज उठा सके। इसलिए बच्चियों को जरूर पढ़ाइए और एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उनके पास आप खुद ही ऑप्शंस कम दे देते हो, इयर्स कम देते हो कि नहीं अब बच्ची 22 23 24 साल की हुई, अब आप जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी करेंगे, ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ाएंगे तो मत पढ़ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगी कि खत्म करें, बच्चियों को खुल करके जितना वो पढ़ना चाहती हैं, जिस दिशा में अपना करियर बनाना चाहती हैं बिल्कुल बनाने दीजिए, क्योंकि वो उनके आगे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो उनको एटलीस्ट ये ऑप्शन दीजिए कि अपने मन से खुल के पढ़ाई करें, अपने पैर में खड़े हों और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। समय भी लगभग हो गया है और आप लोगों ने इस पूरे सेशन को लाइवली लोगों ने सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और आगे सभी से मैं अनुरोध करूँगी कि सारी टेंशन्स छोड़ें, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, करियर के भी ऑप्शन हैं, पढ़ाई के भी ऑप्शन हैं। सभी बच्चों से मैं शुभकामनाएं दूंगी, जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, जो भी होगा बेस्ट होगा और उसके लिए हमको बिल्कुल उसका स्वागत करना है, और आगे हम क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए उसके लिए हमको तैयार रहना है, और सभी को इन सब टेंशन्स को दूर करके फ्रीली हैप्पीली और पॉजिटिव रहना है। पुनः एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप सभी जो यहाँ पे जिन्होंने सुना और इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।